अब जब इल्म में रसूख आ जाता है ना, तो फिर इंसान पता है कैसा हो जाता है कि उसकी दुआएं बदल जाती हैं। अब उसकी दुआ क्या है, अब ये दो आयतें आगे आ रही हैं उसकी दुआ पे जो रसूख पा लेता है इल्म। वो क्या कहता है, रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बादा इज़ हदैतना, ए हमारे रब हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर देना हिदायत देने के बाद। यानी उस इंसान को हिदायत की कदर आ जाती है, उसको हर वक्त ये डर रहता है कि हाय कहीं ये हिदायत की नेमत मुझसे छीन ना जाए, हाय कहीं ये हिदायत मेरे हाथ से ना चली जाए। देखें हिदायत की असल कदर पता है किसको आती है, जिसने कभी बेदीनी देखी हो, जिसने गुमराही के अंधेरे देखे हो, जिसने बदबख्ती के दिन देखे हो। इसीलिए आप देखते ना बाज इतने यानी बहुत ही बुरे उससे जिंदगी से निकल के इस्लाम की तरफ आते हैं, बहुत ही गुमराही में थे, बहुत ही गुनाहों में पड़े हुए थे, और फिर वो इस्लाम लाते हैं, फिर ऐसे लाते हैं कि उनकी जिंदगी जैसे रोशन हो जाती है, क्योंकि उन्होंने वो चीज देखी होती है, उनको पता होता है कि हम कहाँ से निकले, किस दलदल पे फंसे हुए थे वहां से निकले, उनको फिर बड़ी कदर होती है। और जिनको पक्का पकाया मिल रहा है, जिनको हमेशा से ही मिल रहा है, जिन्होंने सारी चीजें पैदा होते से ही देखी हैं, उनको कोई कदर भी नहीं होती, उनको पता ही नहीं कि अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी गुमराही से बचा लिया ये हिदायत दे के। तो इस हिदायत को वो महसूस कर सकता है जिसने दुखन देखी हो गुनाहों की, जो उसने कभी देख कर आया, उसको पता होगा ये मुझे कितनी बड़ी दौलत मिल गई। तो ये सोचें कि जब वो इल्म में रसूख पा लेते हैं ना, उनको ये हिदायत मिल जाती है, तो उनको ऐसे लगता है जैसे धूप से ठंडी छांव में आ गए, फिर वो हर वक्त डरते रहते हैं, आए कहीं दोबारा वो पहली जिंदगी की तरफ ना लौट जाऊं, आए कहीं दोबारा उन्हीं अंधेरों में ना चला जाऊं, आए कहीं मेरा ईमान ना चला जाए। और वाकई जब रसूख आने लगता है तो वाकई ये फिक्र सबसे ज्यादा होती है इंसान को। और उसने ऐसी गुमराही के अंधेरे नहीं भी देखे ना, जब इंसान रोशनी में आता है ना, एक अंधेरी जिंदगी थी, जहालत की भी तो अंधेरे होते हैं, अंधेरी जिंदगी से ये हिदायत की रोशनी जब इंसान पाता है ना, तो फिर वो कहता है आई ये मैं कहाँ पड़ी भी थी, तो शुक्र है अल्लाह ने मुझे ये राह दिखा दी, अल्लाह अब दोबारा ना इस पे भेज देना वापस। क्यों? इसलिए कि दिलों का क्या पता है। आपको पता है हज़रत आसमां ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन पूछा, क्या दिल उलट पुलट हो जाता है? आपने फरमाया हर इंसान का दिल अल्लाह की उंगलियों में से दो उंगलियों के दरमियान। अब ये भी मुतशाबे में बात है, ठीक है, उंगलियां हम नहीं जानते अल्लाह की उंगलियां कैसे या क्या, बस जो हदीस में आ गया हमने बस मान ली, तो दो उंगलियों के दरमियान है, अगर चाहे कायम रखे अगर चाहे फेर दे। सुभान अल्लाह, ये दिल जो है ना ये फिर जाता है, इसीलिए इसका नाम कल्ब है। कल्ब का मतलब होता है वो चीज जो उलट पुलट होती रहती है। एक और हदीस में आता है हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने से रिवायत है कि आपने फरमाया दिल की हालत ऐसी है जैसे कोई पार है, पार नहीं होता फेदर, पार किसी चटियल मैदान में पड़ा हुआ है और हवाएं उसको उलट पुलट कर रही हैं, पार की क्या हैसियत है मुझे बताएं। इसी तरह ये दुनिया के फितने हैं ना, ये हवाएं हैं, ये उठा गए वो दिलों को इधर से उलट पुलटती। लोग इंटरनेट पे बैठते हैं, सर्च किया पता नहीं क्या दिमाग के अंदर आया, क्या चीज पढ़ ली, उसके बाद ईमान ही जाता रहता है। किसी से बात की, उसकी बातों से इतने मुतासिर हुए, किसी ने कहा कि मैं अच्छे भले मुसलमान थे, पाकिस्तान में थे, प्रोफेसर कोई इस तरह कहीं पढ़ने के लिए जा रहे थे, और उन्होंने जहाज में गए हैं यूके, और रास्ते के अंदर एयर होस्टेस से बातें हुई, और उसने कहा तुम्हारे नबी तो ऐसे ही ऐसे ऐसे, कहते जिस वक्त मैं बैठा था तो मुसलमान था, जब जहाज से उतरा तो इस्लाम जा चुका था, इतने डाउट्स थे इस्लाम के बारे में। दिल का नहीं पता होता, ये उलटता पुलटता रहता है। आज अगर दिल कुरान में लग रहा है, शौक आ रहा है इसका, तो कल का कोई पता नहीं है, इसलिए इंसान डरे इस बात से। जब तक मौत नहीं आ जाती ना, उस वक्त तक कोई किसी के बारे में फाइनल नहीं कह सकता कि इस क्या है। किसी के लिए ना सोचो कि जो कोई जिंदा है कि अल्लाह मुझे ऐसा बना दे ना, आपको क्या पता इसका कल कैसा है, आपको क्या पता इसके ऊपर इसको मौत किस पे आती। हाँ जो जा चुके हैं और वो मकामात पा चुके, जैसे सहाबा हैं, तो आप उनके जैसी ख्वाहिश कर सकते हैं कि अल्लाह ऐसा बना दे। क्योंकि उन्होंने उस सरहद पार कर ली, आपको पता चल गया कि वो ईमान पे दुनिया से गए, बाकी किसी का नहीं पता है। आज दिल हिदायत पे है, कल को अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ कर देना, अल्लाह हमारे पास तो और कुछ है ही नहीं सिवाय इसके, कुछ भी नहीं है, तो है अल्लाह कभी हमसे ये ना छीनना। अब देखिए ना, जिसको कुछ पता होगा वही जानेगा ना कि ये कितनी बड़ी नेमत है, और जिसको पता ही ना हो, उसको पता ही नहीं हिदायत क्या, उसको क्या चीज की कदर होगी, उसने ना इसका टेस्ट चखा ना जाना, वो तो फिर बेपरवाह होगा। तो बड़े बड़ों को पलटते हुए देखा है मैंने, बड़े बड़ों को, कुरान भी पढ़ लिया, ये भी कर लिया, उसके बाद ऐसे पलटे, ये वापस आने का नाम ही नहीं लेते। एक शख्स का वाक्या पढ़ा कि वो बड़ा अच्छा था, बड़ा नेक था, अल्लाह वालम क्या उसके हालात है, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन जब मौत की सख्ती आई तो कितने दिन वो, एक वाक्या कहीं लिखा हुआ था ये, कि कितने दिन वो मौत की सख्ती में रहा, फिर कहने लगा अपने घर वालों को कुरान लेकर आओ। जब वो कुरान लेकर आए तो कहता है मैंने इसका इनकार किया, और उसके बाद उसकी जान निकल गई। यू नेवर नो, ये दिल है ना, इसके अंदर क्या ख्याल आते हैं, क्या हमें नहीं मालूम, तो हर वक्त डरते रहे, हर वक्त ये अल्लाह ताला मुझे माफ कर देना, मुझे फितनों से बचाना। एक रिवायत में ये भी आता है, फिर हजरत असमा ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे कोई ऐसी दुआ सिखा दे कि मैं अपने अल्लाह से मांगा करूं। आपने फरमाया ये दुआ मांगा करो, ए अल्लाह, ए मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब, मेरे गुनाह माफ कर दे, मेरे दिल का गुस्सा रंज और सख्ती को दूर कर दे, मुझे गुमराह करने वाले फितनों से बचा ले। हमें नहीं पता ना ये फितने जो हैं, किस वक्त इंसान किसी की बात से मुतासिर हो जाए, किस वक्त इंसान किसी को मटेरियल को पढ़ा उससे मुतासिर हो जाए, किस वक्त किसी ऐसे इंसान के से उसका पाला पड़ जाए जो उसको अल्लाह ना करे गुमराही की तरफ ले जाए। इसके अंदर हमें ये भी एक बात और भी समझ आती है, वो ये कि हम कभी किसी से मायूस नहीं हो सकते, क्योंकि दिल है ना दिल, आज वो दिल किसी तरफ पलटा हुआ है तो कल को वो ईमान में भी बहुत आगे जा सकता है। हम ये नहीं कह सकते इसके तो बस बात ही छोड़ दो, इसने तो कभी सही होना ही नहीं, नहीं हम नहीं कह सकते, आप किसी से भी उम्मीद छोड़ नहीं सकते, समझ आई। और कोई भी जो किसी हिदायत को पा गया या ईमान रखने वाला है वो भी कभी बेखौफ नहीं हो सकता, तो ना उनसे उम्मीद छोड़ सकते। अब ये तो कभी मुसलमान ही नहीं होने, नहीं, ये तो बड़ा आगे निकल चुका, नहीं ये नहीं कहना चाहिए। अल्लाह अकबर। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम जब रात को जागते थे ना तो एक बड़ी प्यारी दुआ किया करते थे, फरमाते थे ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका, मेरे ख्याल आपको मतलब तो इंशाल्लाह आता ही होगा, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका अस्तगफिरुका ली दंबी व असअलुका रहमतन अल्लाहुम्मा जिदनी इल्मा वला तुज़िग़ क़ल्बी बादा इज़ हदैतनी व हबली मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। यानी ये जो आखिरी बात, सुभान अल्लाह, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मांगते थे, तो इसके बाद हमें अपनी इस दुआ को याद करना, इसको मांगा करना है। आपको पता है नबी अलैहिस्सलाम उनको तो जरूरत भी नहीं थी, लेकिन वो कसरत से क्या दुआ मांगते थे, बहुत ज्यादा मांगते थे, या मुकल्लिब अल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिका, ए दिलों को उलट फेर करने वाले मेरे दिल को साबित कर दे अपने दीन पे, अल्लाह इसके ऊपर जमा देना, दिल ना कहीं पलट जाए। उनको क्या जरूरत थी ये दुआ करने की, हमें कितनी ज्यादा जरूरत है इस दुआ की। अल्लाह हमें माफ कर दे, अल्लाह ताला हमसे इस नेमत को कभी ना छीनना, हमारे दिलों को कभी टेढ़ा ना करना। देखें ये जो रासिखूना फिल इल्म की बात है ना, यही ये दुआ करते, तो इसलिए रासिख बनना है इल्म, रासिख बनना है इल्म के रास्ते से इंसान हिदायत पा सकता है। इल्म इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि कि कोई नेमत इससे बढ़ के नहीं है। वो ये मैं कैसे कह सकती हूँ? अब आप कहें कि ये आप कहाँ से ये कह सकती हैं, यहाँ पे ऐसी किताबी बातें, नहीं, इसके सबूत है। सबूत क्या है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को जो दुआ सिखाई है ना, उसमें ये नहीं फरमाया कि ए नबी आप मेरे से मांगे कि मैं आपको दौलत ज्यादा दे दूं, आपको सेहत ज्यादा दे दूं, मैं आपको मसलन है कि औलाद दे दूं, या मैं आपको कोई और। अल्लाह ताला ने अपने नबी से फरमाया कुल ए नबी कुर रब्बी जिदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, वो ज्यादा कर। और बहुत सी चीजें ज्यादा हो सकती थी, उनकी दुआ हो सकती थी, लेकिन फरमाया ए नबी आप ये मांगे, इससे बड़ी इसका मतलब है कि कोई दौलत नहीं है। हम इसको छोड़ के माल के पीछे जाते हैं ना, असल दौलत वो नहीं, असल दौलत ये है, क्योंकि माल इंसान को यहीं छोड़ जाएगा, मगर इल्म की दौलत उसके साथ कब्र में जाएगी। ठीक है, इंसान को जब मुनकिर नकीर सवाल जवाब करेंगे तो वो कहेगा कि मैंने, वो जब सही जवाब देगा तो वो पूछेंगे तुम्हें कैसे पता, कहेगा मैंने इल्म लिया था कुरान का, उससे मुझे पता चला, ये इतनी बड़ी दौलत है। किसका माल उसके साथ जाता है बताएं कब्र में? और ये माल तो लुट जाता है यहाँ पे दुनिया में भी, इल्म की दौलत लुटती नहीं है, ये जितना किसी को देंगे ना उतनी बढ़ती जाएगी। तो वादा इजादी था वह हब लाना मिल लदुन का रहमत, ए अल्लाह अपने पास से रहमत के रहमत तू हमें अता फरमा, यानी अल्लाह हमें तेरी रहमत की जरूरत है, रहमत का खजाना अल्लाह के पास है, अल्लाह ना किसी पर रहमत करे तो कहीं से मिल नहीं सकती है। तो ए अल्लाह ये तू अपने रहमत के खजानों में से हमें अपने पास से, यानी अपनी रहमत के खजानों में से हमें अता फरमा। तो इसका मतलब है कि रासिखूना फिल इल्म को पता है ना कि अल्लाह के पास ये, मिल लदुन का कहा ना, अपने पास अल्लाह के पास ये रहा, और वो ही हिदायत भी दे सकता है और वो ही हिदायत में इजाफा भी कर सकता है। इन्नक अंतल वहाब, बेशक अता करने वाला सिर्फ तू ही है। और वहाब किसको कहते हैं? वो देने वाला जो इन रिटर्न कुछ नहीं लेता, तो हमारे पास कुछ देने को है ही नहीं, जो बगैर मुआवजे के देता है, कोई फीस नहीं है, वो है वहाब, फ्री में देता है और बहुत ज्यादा देता है और बिन मांगे देता है। तो अल्लाह तू तो वहाब है, अल्लाह तू हमें अता फरमा अपनी रहमत में से, और अल्लाह की रहमत में हर चीज ही आ जाती है। देखिए अल्लाह की रहमत में जन्नत भी आ गई, अल्लाह की रहमत में दुनिया की भी जो भी आसानियां हैं वो भी आ गई, दुनिया की भी खैर और आफियत अल्लाह की रहमत ही है, हिदायत भी अल्लाह की रहमत, जिसको अल्लाह की रहमत में से जर्रा भी मिल गया उसके तो नसीब खुल गए। रब्बना इन्नका जामिउन नासि लियौमिन ला रैबा फीह, ऐ हमारे रब बेशक तू जमा करने वाला है लोगों को एक दिन जिसमें कोई शक नहीं, यानी वो आखरत के अकीदे पे ईमान रखने वाले हैं, उनका यकीन है कि एक दिन है, इन्नका जामिउन बेशक इसमें कोई शक ही नहीं है, लियोम ला रईबा फी, ये दिन है जिसमें कोई शक नहीं, इसका मतलब है कि इनको यकीन होता है कि कयामत का दिन है, और अल्लाह ताला ये कुदरत रखता है कि वो सबको जमा करे। इसीलिए तो वो रो रो के अल्लाह की तौफीक मांगते हैं, उसका तावुन मांगते हैं, इन अल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह तू तो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, अल्लाह तूने जो वादा किया है, जो मुलाकात का भी वादा है ना कि अल्लाह से एक दिन मुलाकात होनी है, इसका अल्लाह ने वादा किया है, वो अपॉइंटमेंट टाइम है, दुनिया के अपॉइंटमेंट्स का टाइम टल सकता है, आप कैंसिल कर सकती हैं, आप डिले कर सकती हैं, अल्लाह के साथ मुलाकात की जो अपॉइंटमेंट का टाइम है ना वो डिले नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं कि हम जानते हैं अल्लाह, हम मानते हैं, हमें यकीन है कि एक दिन तूने जमा करना है, अल्लाह तू जब लोगों को जमा करेगा, तेरा वादा तो पूरा होके रहने वाला है, तू नहीं अपने वादे खिलाफ करता। तो अल्लाह में हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर देना, अल्लाह हमारे हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को ऐसा ना कर देना जैसे कुछ लोगों के दिल टेढ़े हो जाते हैं। ये वो हिदायत को खो देते हैं, या उनकी हिदायत उनके हाथ से चली जाती है, सीधा रास्ता भूल जाते हैं, कहीं के कहीं निकल जाते हैं। अब सोचिए ना इसमें कितनी आजी है कि इंसान ये नहीं समझ रहा, नहीं हाँ जी मैं तो बड़ी अकल वाली हो गई, अब मुझे सब आ गया, अब नहीं मुझे कोई फर्क पड़ता, अब नहीं मुझे कोई कुछ कह सकता, अब नहीं मुझे कोई हिला सकता जी। नहीं, कोई तकब्बुर नहीं है अल्लाह, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना लिहादा, उस अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें यहाँ तक ही हिदायत दी है, इस जन्नत तक पहुंचा दी है, हमारा अपना थोड़ी कोई कमाल है। तो इससे पता चलता है कि हिदायत मिले या आपको इल्म मिले तो इसमें अल्लाह के सामने और झुक जाए, और अल्लाह का एहसान माने, शुक्र अदा करें, और कभी अपनी अकल अपनी इसमें अपनी हिदायत के ऊपर घुमंड में ना आए। ये भी सिर्फ अल्लाह ही की तौफीक होती है। और अभी ये भी नहीं पता कि अल्लाह माफ कर दे हमें, कहते हुए भी डर लगता है कि ये नहीं पता कि को हिदायत पे कौन कौन कायम रहता है और कौन नहीं। तो इसमें आप अल्लाह से मदद मांग रहे हैं, अल्लाह मैं नहीं रह सकती, अल्लाह तू मुझे रखना, मेरा दिल ना कहीं टेढ़ा हो जाए, अल्लाह हमें माफ करना। हम सब इसके ऊपर इस दुआ को एक दफा कहें, रब्बाना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, लन तुग़नी अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिन अल्लाही शैया, उनको ना तो उनके माल काम आने हैं ना उनकी औलाद काम आने हैं। ये किस चीज के ऊपर कहा गया? आपको पता है जब बदर हुई थी ना, बदर के अंदर क्या हुआ था, उससे पहले थोड़ा सा अगर आप उसको बैकग्राउंड जहन में लेकर आए कि काफला जा रहा था अबू सुफियान का, और किस तरह वो निकल गया, और ये जो काफला था ये भेजा भी मुशरिकीन ने किस तरह था कि मुसलमानों के जो रह गए हुए थे वहां पे माल और उनकी जो भी प्रॉपर्टीज थी उन सबको लेकर और इस काफले में उससे माल लगाया था, तो बेसिकली मुसलमानों का माल यूज किया था। और जब वो काफला लेकर अबू सुफियान आ रहा था और उसने अबू जहल को पैगाम भेजा कि मैं तो खतरे में हूं, मेरी हेल्प के लिए आओ, तो मक्का वालों ने अपना माल सारा अपना ये दिया था ताकि मुसलमानों का मुकाबला कर सके। अल्लाह ताला ने फरमाया ये माल भी नहीं कोई काम आने, ये औलाद भी नहीं कोई काम आने, ये दोनों ही काफरों के कोई काम नहीं आने वाले। आज लोग काफरों के माल को देख के रीझते हैं और उनकी आंखें फटी रह जाती हैं, हाँ इनके पास कितना कुछ है, इन्होंने कितनी तरक्कियां कर ली, आए देखो जरा उनके बच्चे कितने बड़े फलाने ओहदे पर पहुंच गए, ये इनको कुछ नहीं काम दे सकता, ये कहाँ से कहाँ इन्होंने देखो ये भी पा लिया ये भी कर लिया, हम ये ऐसे रह गए। जो कुफर के साथ कोई चीज काम आने वाली नहीं, दुनिया में इंसान की सारी जिंदगी इन्हीं दो चीजों के पीछे तो खपती है, माल और औलाद, या माल कमाता है और खर्च करता है औलाद के ऊपर, कहता है औलाद के लिए रह जाए, लेकिन ये अल्लाह के यहाँ कोई काम नहीं आएगी। अल्लाह के यहाँ कोई ये जाके नहीं कह सकेगा अल्लाह ये मेरा सारा माल ले ले लेकिन मुझे आज छोड़ दे, अल्लाह ये मेरी औलाद ले ले लेकिन मुझे आज छोड़ दे, ना औलाद बचा सकेगी। समझ आए? अगर मुसलमान का भी वही रवैया होता है जैसे कि काफिर का है, ये काफिर का रवैया क्या होता है? कि ये माल का कमाना उसको अल्लाह ताला से और हिदायत पाने से दूर कर देता है, और मुसलमान भी ऐसे ही करता है, और औलाद को भी किस काम में लगाया कि सिर्फ उनकी दुनिया की फिक्र है, उनकी आखिरत की कोई फिक्र नहीं, ना आखिरत के काम का उनको बनाया, सिर्फ यहीं का बना दिया, यहाँ पे ओहदे पा लें, यहाँ पे कमाइयां कर लें, यहाँ पे हमारे बाजू बन जाए बस, तो काफरों वाला ही रवैया है। तो फिर मुसलमान का भी माल और औलाद तब काम आएगी जब अल्लाह के रास्ते में लगाए, माल अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, औलाद को अल्लाह के काम का बनाया, औलाद नेक हो तब वो काम आ सकती है, अदरवाइज नहीं। तो काफरों का तो बिल्कुल ही खुद भी डूबे और उनको भी ले डूबे। इसलिए बताया गया कि अपनी इन ये जो दो चीजें हैं ना इनको रुकावट ना बनने दो अल्लाह के रास्ते में। आज तो ये तुम्हारे काम आ सकती है, कल को ये कोई काम नहीं आएंगी, ये माल डुबो देगा तुम्हें, ये तुम्हें रब की तरफ नहीं आने देता ना। कभी जॉब है, कभी दुकान है, कभी कारोबार है, कभी घर बार है, नहीं घर की चीजें, घर का काम, घर के ये माल नहीं काम आना। औलाद है तो औलाद के ये काम है, औलाद को वहां लेकर जाना है, औलाद की ये पढ़ाई, ठीक है सब चीजें हैं, लेकिन उनको अल्लाह का बंदा बनाओ। आज तो बंदों का बंदों से मामला है ना, तो बड़ा फखर है, बड़ा मान है, बड़ी बड़ाइयां हैं, हमारे पास इतना पैसा, हमारे पास ये प्लॉट, हमारे पास ये गाड़ियां, हमारे पास ये जायदादें, हमारे पास वो वेकेशन होम, हमारे बच्चे इस ओहदे पे पहुंच गए, हमारे बच्चों ने ये तरक्कियां कर ली हैं, वो जी फलां जगह पे वो वजीर है, वो फलां मेरा बच्चा डॉक्टर है, फलां मेरा बच्चा ये है। आज तो इसके ऊपर शेखियां है ना, क्योंकि ये बंदों का बंदों से मामला है। जब बंदे का रब के साथ मामला होता है तो इन चीजों की कोई अहमियत नहीं होती कि किसके पास कितना पैसा और किसका बच्चा कितने होते पे। ज्यों ही गैब का पर्दा उठेगा ना, ये तो अभी इसलिए पर्दा पड़ा हुआ ना, गैब का पर्दा उठेगा तो ये चीजें जीरो नजर आएंगी, जीरो। जिस जान को घुला के रख दिया इस माल को कमाने के पीछे और इस औलाद के पीछे, ये दोनों कोई नजर भी नहीं आने, नजर भी नहीं आएंगे। और हम भी सोचें कि क्या माल औलाद को हमने जिंदगी में प्रेफरेंस दी हुई है, ये हमें अल्लाह से दूर रखने वाली तो नहीं है? एक तरफ माल कमाने की बात हो या औलाद की कोई चाहत हो और दूसरी तरफ अल्लाह का कोई हुक्म हो, तो किसको प्रेफरेंस देते हैं? दीन की कोई बात हो और दूसरी तरफ जॉब की कोई बात हो या बच्चे कुछ जिद कर रहे हैं, किसको प्रेफर करते हैं, किसको तरजीह देते हैं? नहीं, बच्चे कह रहे हैं ना, बच्चों का तो मानना ही पड़ता है। याद रखें फिर, ये बच्चे काम नहीं आने। और अगर देखनी है, इसकी मिसाल तो आगे आ रही है, पहले इसको खत्म कर देते हैं। वह उलाए का हम वकूद नार, ये सिर्फ आग इनका ठिकाना होगी और आग का ईंधन बनेंगे, यानी इनसे आग झोंकी जाएगी, आग को आग का फ्यूल बनेंगे, इनसे आग भड़काई जाएगी। ये काफिर जो खुद भी कुफर पे रहे, उन्होंने सारी जिंदगी माल कमाने में लगाई, औलाद को भी ऐसा ही बनाया, तो रद्दी कहाँ जाती है, गार्बेज कहाँ जाता है? उसको कोई संभाल के तो नहीं रखता, इन्होंने भी गार्बेज कर दी अपनी जिंदगी। तो इनसे आग जले के, आप देखें, आप कोई कह सकता है, देखें ये भी मुतशाबे बात में से है ना, कोई कह सकता है ये कैसे हो गया, इंसान से कैसे आग जल सकती है, इंसान तो खुद जल जाएगा। नहीं, ये आग को भड़काएगा, ये मरेगा नहीं। कदा भी आली फिरौना, अगर तुमने सीखनी है ना बात, अगर तुमने समझनी है ना बात, तो तुम अपने ऊपर क्या फख्र करते हो, हम बड़ी चीजें, हमारे माल, हमारी औलादें, तुमने देखना है तो जरा उनको देखो जिनका डंका दुनिया में बजता था। आज भी फिरौन का नाम, जो इस्लाम में नहीं, वो इस्लाम के अलावा जितने लोग हैं उनसे पूछ लो, हर एक फिरौन को जानता है। फैरो कौन नहीं जानता, जिसका दीन से कोई ताल्लुक भी नहीं वो भी जानता है। तुम देखो फिरौन को, आले फिरौन को, कैसे थे वो, जो अपने वक्त का सबसे बड़ा इक्तदार रखता था। वो फिरौन रब की तरह पूजा जाता था, उसको उसके माल की कोई कमी नहीं थी, इक्तदार की कमी नहीं थी, स्टेटस की कमी नहीं थी। आले फिरौन की से इतनी थी अपनी सोसाइटी में, उनका रोब और दबदबा इतना था, जो चाहते थे करते फिरते थे। वल्लदीना मिन कबलिहिम, और जो उनसे पहले भी आए उनको जरा देख लो, कौन आए थे उनसे पहले? नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोग, उन्होंने भी बड़े सीना तान के कहा था कि हम नहीं मानते। और आद को देखो, जो कहते थे हम जैसा कोई है तो सामने आए, हम जैसा कोई है ही नहीं, ऐसे थे वो। समूद देख लो, कौमे शुएब देख लो, जो इकोनॉमी की यानी टॉप पे थी, बूम करती थी उनकी इकोनॉमी, जबरदस्त। इबरत हासिल करो उनसे, उन्होंने भी अल्लाह की आयात को झुठलाया था, उन्होंने भी कुफर किया था। अब वो अपने आप को बड़ी चीजें समझते थे, बड़ा तकब्बुर था उनको अपने माल पे, अपनी औलादों पे, अपने जत्थों पे। अल्लाह ने देखो फिर, कज़्ज़बू भी आयातिना, उन्होंने हमारी आयात को झुठलाया, फअख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, अल्लाह ने फिर क्या किया, उनको पकड़ लिया उनके गुनाहों की बदौलत। हम सोचते ना वैसे ही गर्क हो गए, वैसे ही तूफान आया उसके अंदर हो गए, वैसे ही जलजला आया उसके अंदर ऐसे हो गए, बेचारी वो सारी कौम खत्म हो गई। नहीं, अल्लाह ने पकड़ा उनको, यहीं पे आके हमारी आंखें बंद हो जाती है ना, कि जब हम असबाब को देखते हैं हमें क्यों हमारी मत मारी जाती है कि हर चीज में हम कहते नहीं वो ऐसा हुआ था ना इसलिए ऐसा हो गया, कोरोना इसलिए आया क्योंकि वो वहां पे उन्होंने ये खाया, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने लैब के अंदर पता नहीं क्या कर दिया। ओ खुदा के बंदो, ये नहीं सोचते कि अल्लाह ताला कुराने पाक में हर जगह फरमाता है अल्लाह ने फाखदा हुमुल्लाह बिदुनूबिहिम, कोई तुम्हारे भी गुनाह होंगे जिसके ऊपर कोई पकड़ आई है कि नहीं, उसकी तरफ नहीं देखना। बस ये वो ये वजह बन, कोई अपने अमाल की तरफ भी तो देखा करो। अगर तो तुम्हारे अमाल बहुत नेक थे, बहुत अच्छे थे, तो ठीक है, एक आजमाइश है अल्लाह की तरफ से। लेकिन अगर तुम्हारे अमाल वाकई तुम समझते हो ना कि हमारे अंदर गलतियां थी, तो अल्लाह की पकड़, अल्लाह शदीदुल इकाब, अल्लाह सख्त सजा देने वाला, ये समझ जाओ कि अल्लाह नाराज है। उसकी तावीलें ना करो, जस्टिफिकेशंस ना दो, ना निकालो यहां से उसने ऐसा कर दिया, उसने वो कर दिया, नहीं कहो कि हमारा जुर्म हुआ है, हमने किया है गलत, अल्लाह हम माफी मांगते हैं। जिस वक्त आप इधर उधर देखना शुरू कर देते ना क्या वजह बनी, ठीक है वजूहात जानना अपनी जगह है, मादी असबाब भी कोई होते हैं, लेकिन असल पीछे कौन है, आज तक क्यों ना ऐसा हुआ था, कोई है ना ताकत पीछे, उसको छोड़ के इन चीजों में ये साजिश है वो फलां है, हर एक अपनी अपनी बोली बोलता जा रहा है, और इस चीज की तरफ आते ही नहीं है कि अपने अंदर झांक के देखें हमने कुछ गलत किया है और हमें अल्लाह को मनाना है। तो उन्होंने झुटलाया हमारी आयात को, उन्होंने नहीं मानी थी ना हमारी निशानियों, हमने निशानियां नाजिल की, उन्होंने नहीं माना, तो अल्लाह ने पकड़ लिया उनको, उनके जुर्म पे पकड़ा ना। तो जब जराइम होते हैं ना ऐसे, इस किस्म के गुनाह होते हैं, तो अल्लाह की पकड़ आ जाया करती है, मान लो इस बात को। सारी कुरान के अंदर इन कौमों के वाकयात बताते हैं कि अल्लाह की पकड़ आती है। हाँ अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को वाइप आउट नहीं करेगा इस दुनिया से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से, वरना शायद अब तक खत्म हो चुकी होती, क्योंकि इन्होंने तो सबके ही गुनाह अपने अंदर ले लिए। कुल लिल्लदीन कफरू सतुग्लबून व तुहशरून इला जहन्नम व बिस अलमिहाद, कह दीजिए काफिरों से, ऐ नबी आप इनको कह दें तुम गालिब आओ, मगलूब हो जाओगे, तुम पे गलबा पा लिया जाएगा और तुम इकट्ठे किया जाओगे जहन्नम की तरफ। ये किसकी बात है? अब शाने नजूल इसका क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, सीरत इब्ने इसहाक में है कि जब बदर की जंग से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह याब होके वापस आए, आपको पता है यहूद का एक कबीला रहता था बनू कैन का, उनके बाजार में यहूदियों को जमा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फरमाया यहूदियों इससे पहले कि कुरैश की तरह तुम्हें भी जिल्लत और पसपाई देखना पड़े तो इस्लाम कबूल कर लो। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि आपका तो मुकाबला अभी उन कुरैशियों से हुआ है ना, वो जंग को जानते नहीं थे इसलिए उन्होंने मतलब शिकस्त खाई है, लेकिन अगर आपकी लड़ाई हमसे होगी ना तो हम बता देंगे कि लड़ाई होती क्या है और मर्द कौन होते हैं। तो तब ये आयत नाजिल हुई कि इन काफरों से कह दो, यानी अहले किताब मुराद हैं, तुम मगलूब भी होगे और तुम इकट्ठे भी किए जाओगे जहन्नम की तरफ। और जिसका भी रवैया इसी किस्म का होगा अल्लाह की आयात के मुकाबले में, और जिसका भी यही रवैया होगा कि वो अपनी जिंदगी के अंदर अपने आप को इतना बड़ा वो समझे कि अल्लाह की आयात के आगे खड़ा हो जाए और ना माने इनको, तो उसका यही अंजाम है। कद कान लकुम आयतुन फी फ़ियतैन इल्तक़ता, तुम्हारे लिए निशानी है इसमें, यानी कि इसके लिए निशानी है, जितने जो उस वक्त के काफिर भी थे, वफ्ते नजरान भी, हम सब भी, सबके लिए निशानी है किस में, फियातैन दो ग्रोहों में, इल्तकता जो मिले जिनमें जंग हुई, वो कौन दो ग्रोह थे, फियातुन तुकातिलु फी सबीलिल्लाह व उखरा काफिरतुन, एक ग्रोह था जो अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाला था और दूसरा ग्रोह काफिर था। ये कब की बात हो रही है? बदर की, बदर कि जो जंग थी इसमें इतनी बड़ी निशानियां हैं लोगों के लिए कि आज तक हिस्टोरियंस हैरान है कि कहां 313 और कहां ऑलमोस्ट 1,000 लोग, एक के मुकाबले में मुसलमान एक और उसके मुकाबले में तीन थे जिनसे मुकाबला था, जिनसे जंग थी, और कैसे मुसलमान जीत गए, बहुत बड़ी निशानी है ना इसमें। अल्लाह ताला ने बताया एक ग्रोह था, देखिए यहाँ पे सुभान अल्लाह, ये नहीं कहा कि एक ग्रोह मुसलमानों का था, दूसरा ग्रोह काफिरों का था, ऐसे ही होना चाहिए था ना। कहा एक ग्रोह था जो लड़ रहा था अल्लाह के लिए, इसलिए कि मुसलमान भी सारे अल्लाह के लिए नहीं लड़ते। कोई मुसलमान है जो अपनी बहादुरी के लिए लड़ रहा है, कोई मुसलमान है जो अपने कबीले के नाम के लिए लड़ रहा है, कोई मुसलमान है हो सकता है अपने कोई तमगे या उसके लिए लड़ रहा। एक ग्रोह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रास्ते में लड़ रहा था और दूसरा काफिर ग्रोह था, सुभान अल्लाह। और आप इसमें देखें, हाँ जब कहा जा रहा है एक ग्रोह तो कातिलु फी सबीलिल्लाह, तो इस ग्रोह में चेहरे नजर आ रहे हैं? किसी का चेहरा नजर आ रहा है? किसी का भी नहीं आ रहा। सिर्फ क्या नजर आ रहा है? फी सबीलिल्लाह। इसलिए जब अल्लाह ताला के दीन के लिए कोई काम करने लगो तो नामों पे ना जाओ, मेरा नाम हुआ कि नहीं, मेरा नाम नजर आया कि नहीं, मैं प्रोमिनेंट हुई कि नहीं, फी सबीलिल्लाह। सब मिल के वो काम करते हैं फिर। और उखरा काफिरा, तुम दूसरा कुफर वाला है, उसमें भी कोई चेहरा नहीं नजर आ रहा, सिर्फ कुफर ही नजर आ रहा है। यरौना हुम मिथलैहिम रअयल आइन, वो देख रहे थे उनको दुगना अपने से देखना आंख का, यानी उनकी आंख का एक वो था, रियलिटी नहीं थी लेकिन आंख का आंख ऐसे देख रही थी, यानी काफिर मुसलमानों को देख रहे थे तो उनको मुसलमान अपने से दुगने लग रहे थे। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, वो जिसको चाहे जितना बढ़ा के दिखा दे, लेकिन इंसान की जो नजर है ना उसमें भी अल्लाह की कुदरत है। हम किस चीज को कैसे देख रहे हैं वो अल्लाह जैसे दिखा दे। अब उनको मुसलमान कैसे नजर आ रहे हैं, वो 1,000 थे तो मुसलमान उनको 2,000 नजर आ रहे हैं, और मुसलमानों को वो कैसे नजर आ रहे हैं, मुसलमान 313 हैं तो उनको वो अपने से दुगने नजर आ रहे हैं, तो 600 नजर आ रहे हैं, हालांकि वो तो 3 गुना थे, सुभान अल्लाह। तो वल्लाहु युअय्यिदु बिनसरिही मन यशा, अल्लाह है जिसकी चाहे वो मदद करे, जिसको चाहे कुव्वत दे, जिसको चाहे उठा दे, जिसको चाहे गिरा दे, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे, ये अल्लाह ताला की मदद होती है। लेकिन अल्लाह ताला भी मदद किन की करता है, जिनमें इखलास हो, जो फी सबीलिल्लाह करने वाले हो, जिनकी नियतों में ये खोट ना हो, मेरा नाम, मेरी ये, मेरी वाह, मैं ये नहीं, वो सब एक थे और इखलास था उनके अंदर। मुखलिस जमात छोटी भी है ना तो देखो वो बड़ी जमात के ऊपर गलबा पा गई, और इखलास नहीं है और सिर्फ नामों की दौड़े लगी हुई है, अपना अपने आप को नुमाया करने की दौड़ है, तो फिर लाखों करोड़ों का भी लश्कर हो तो वो किसी काम का नहीं है। जैसे आज दुनिया के अंदर मुसलमान जो है सेकंड बिगेस्ट रिलीजन इस दुनिया में इस्लाम है, लेकिन आज क्या है इनकी वैल्यू, खसो खाशाक की तरह नो वैल्यू, कोई कदरों कीमत नहीं है। और वजह क्या है, कोई इखलास नहीं, ईमान की हरारत नहीं, दूर चले गए अपने दीन से भी, नाम के मुसलमान। जब ईमान था और इखलास था तो फिर देखें मुसलमानों के पास, अब थोड़ा सा कंपैरिजन ही करके देख लें आपको पता चले, मुसलमानों के पास कोई ऐसा असला नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिसको कोई कहे कि हाँ भाई बड़ी कुव्वत है। मुसलमानों के पास 2 घोड़े थे और 70 ऊंट थे, उनके पास 100 घोड़े थे और 700 ऊंट थे, मुसलमानों के पास सिर्फ 6 जीरें थी और सिर्फ 8 तलवारें थी। 313 भी ऐसे नहीं थे किसी ने डंडा पकड़ा हुआ है, किसी ने कोई नेजा पकड़ लिया, तलवारें सिर्फ 8 थी। आप सोच सकते हैं कि ये लड़ने के लिए आए हुए हैं और उनके पास असला भी नहीं है, उनके पास सवारियां भी नहीं है, और तादाद भी इतनी कम है, लेकिन फिर भी गलबा पा गए। इन्ना फी ज़ालिका लइबरतन लिउलिल अबसार, इसमें इबरत है उनके लिए जो अहले बसीरत है, जो देखने वाले हैं, वो वाकई दिल की आंख से देखते हैं, इबरत की निगाह रखते हैं, उनको इस वाक्य में बड़ी इबरत मिलेगी। और हम देखते हैं कि जब आप वाकई इस तरह से देखें ना तो आपको पता चल जाता है कि नो मैच, लेकिन इसका मतलब अल्लाह ही की ताईद हमें तलाश करनी चाहिए। ये नहीं कि मेरे पास ज्यादा शानो शौकत, काफिर भी निकले थे, उनके पास गाने बजाने वालियां थी, उनके पास नाचने वालियां थी, तवायफें थी, उनके पास ऐसे ढोल बाजे थे, गाजे थे, वो उसके साथ बड़े तमतराक से निकले, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मुसलमानों के पास क्या था, उनके पास तो कपड़े भी पूरे नहीं थे, उनके पास असलहा नहीं था, उनके पास सवारियां नहीं थी। तो आज किस चीज की जरूरत है? अल्लाह की ताईद की। जिसके साथ अल्लाह की ताईद हो जाएगी ना, वो कामयाब हो जाएगा। और अल्लाह की ताईद कैसे आती है ये भी पता चल गया हमें। तो तलाश किसको करना है? हमेशा चीजों को ना देखो, हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास ऐसे नहीं, अल्लाह की ताईद को तलाश करो। अल्लाह ताला हमें अपनी ताईद अता फरमाए, अल्लाह का साथ हो जाए तो सब मुश्किलें आसान हैं, और उसका साथ ना हो तो बड़ी से बड़ी जमातें भी शिकस्त खा जाती हैं। शैतान इंसान को फील कराता है जब वो अल्लाह के रास्ते पे भी चलता है कि तुम तो अकेले हो, तुम तो कम हो, तुम्हें कौन पूछेगा, तुम्हें कौन देखेगा। हालांकि देख लें, जब इखलास होता है और इंसान हक पे होता है ना, तो वो कभी अकेला नहीं होता। हुआ माँ कुम आईना माँ कुन तुम, अल्लाह तला फरमाते हैं वो तुम्हारे साथ है तुम जहां कहीं हो। और ये भी याद रखें, पता चलता है कि हक वाले हमेशा उनकी अल्लाह ताला ताईद नुसरत फरमाता है। ये भी पता चलता है, तादाद में कमी को ना देखो, तादाद में कमी को ना देखो, वर्क करना है तो अपनी नियतों पे करो, वो है असल बात। अल्लाह ताला इन बातों से हमें इबरत सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनते हैं।
هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.